महायज्ञ के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के पावन 9 दिन श्रद्धा व आस्था के प्रतीक हैं। भक्तजन बड़े ही उत्साह से पूरे 9 दिन तक शिव शक्तियों की पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत व उपवास रखते हैं। किंतु प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ 9 दिन तक देवियों की पूजा करना, उनके लिए व्रत व उपवास रखना और सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना, क्या वास्तविकता में यही नवरात्रि की सही परिभाषा है? तो आइए नवरात्रि के पावन पर्व की गहराई को जानते हैं हमारे सेगमेंट गहरी बात द्वारा।
सच्ची नवरात्रि मनाना अर्थात जीवन को हीरे तुल्य बनाना, जिसके लिए 3 बातों का होना अति आवश्यक है। वह है बुद्धि विजडम, धन वेल्थ, शक्ति पावर। बुद्धि हमारी वो शक्ति है जिसके द्वारा हम सही व गलत का निर्णय लेते हैं, अच्छे व बुरे की परख करते हैं। इसलिए बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का वाहन हंस दिखाया जाता है, जो हीरे व कंकड़ में अंतर कर सकता है। उसी प्रकार अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ व स्वच्छ विचारों से पावन करना ही वास्तविकता में सरस्वती माँ की पूजा है। कहा जाता है कि टाइम इज मनी। यदि हम अपने कीमती समय का सदुपयोग करें, आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार मिटाएं तथा आध्यात्मिक मूल्यों से अपने जीवन को सजाएं, तो वही धन की देवी माँ लक्ष्मी की सच्ची आराधना कहलाएगी। हर मनुष्य में सोचने की शक्ति होती है जिसके द्वारा वह हर कर्म करता है, किंतु अच्छा सोचकर जब उस शक्ति का उपयोग हम अच्छे कर्मों को करने में लगाते हैं, तो वह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कहलाती है। इसलिए माँ दुर्गा को शक्ति रूपा भी कहा जाता है। अतः इन तीनों शक्तियों को सही पहचान करके हमें सच्ची सच्ची नवरात्रि मनानी चाहिए।
जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कलश स्थापन से प्रारंभ नवरात्रि की पावन रातें अखंड ज्योति द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में हम नवरात्रों से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों के हल जानेंगे जो अक्सर हम सब सोचते होंगे, जैसे कि नवरात्रों के 9 ही दिन क्यों हैं और जिनके लिए नवरात्रि मनाए जाते हैं अर्थात दुर्गा माँ, वह धरती पर कब और क्यों आई, और इस दिन हम व्रत भी करते हैं तो सच्चा व्रत क्या है और वास्तविकता में जागरण का अर्थ क्या है। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन के दिव्य विचार।
भारत त्योहारों का देश है। हम सब भारतवासी जानते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के लिए नाना प्रकार के त्योहार आज हमारे भारत में कायम है। कुछ त्योहार भक्ति पूजा पाठ आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ त्योहार खाकर कुछ गाकर और कुछ भिन्न भिन्न रूप से मनाए जाते हैं। कोई संगठित रूप से मनाते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से मनाते हैं, लेकिन आज मैं आप सबके सम्मुख एक ऐसे विशेष इस आध्यात्मिक पर्व के विषय में बताने जा रही हूँ जो भारतवर्ष में कोने कोने में मनाया जाता है। और विशेष रूप से कोलकाता में हमने देखा कि बहुत सुंदर रूप से देवियों का त्योहार, माँ दुर्गा का त्योहार, जिसे भक्तजन अथवा आम जनता इतने प्यार से इसे मनाती है कि उन देवियों को जिस स्थानों पर स्थापित किया जाता है वो स्थल कपड़े के द्वारा इस प्रकार पेश किए जाते हैं मानो कि एक सुंदर महल बनकर 2-4 दिन के अंदर ही तैयार हो गया हो। और बहुत सुंदर सुंदर देवियां, कंपटीशन चलता है, कोई छोटे छोटे ब्लेड्स के टुकड़ों से वो देवियां तैयार हैं, तो कोई कपड़े के छोटे छोटे पीसेस से तैयार की गई, कोई पत्थर से तैयार की गई। 2 दिन पूर्व भक्तजन ढोलक बजा बजा कर माँ की महिमा के गीत गा गा कर माँ की प्राण प्रतिष्ठा उन प्रतिमाओं में करते हैं। और दो दिन के पश्चात आम जनता उस स्थल पर अब उन्हें कपड़े के बने देवी नहीं देखते, पत्थर के बने मूर्ति नहीं देखते, एक छोटे से कांच के टुकड़ों के बने देवी नहीं देखते, लेकिन सचमुच माँ दुर्गा इस धरा पर उतर आई हो, अपने मन में अनेक प्रकार की आशाएं लिए हुए, अनेक प्रकार की कामनाओं को लिए हुए भक्त जन माँ के दर पर उपस्थित हो जाते हैं। रात रात भर कैसे लाइनों में खड़े होकर और माँ के दर्शन करते हैं। सचमुच इस प्रकार के दृश्य देखकर मेरे मन में बहुत विचार उत्पन्न होने लगे। ऐसी माँ जिसके दर्शन मात्र से भक्त स्वयं को धन्य समझते हैं, सचमुच अगर माँ ऐसी है तो उस माँ के बच्चे कैसे होने चाहिए। अगर माँ गुणों से संपन्न है तो बच्चे वही हैं जो गुणों से संपन्न हो। दिल्ली में मैं रहती हूँ और मैंने देखा कि रात्रि भर जागरण करते हैं, कहते दुर्गा माँ के दिन है। हमने दुर्गा माँ के दिनों में 9 रातें 9 व्रत के रूप में रखे हैं। कोई 9 व्रत पूरे रखता है, कोई 7 स्वयं रखता है, 2 अपनी फैमिली के किसी अन्य से खा देता है, कोई 3 व्रत रखता है। व्रत रखते हैं, कुछ रात्रि जागरण करते हैं, अपने घर में जोत जगाते हैं और जो बोते हैं जिसे खेतरी का नाम देते हैं, और 9वें दिन या अष्टमी के दिन उस खेतरी को काटते हैं। और विशेष इस त्योहार के दिन जब अंतिम दिन होता है, अष्टमी का दिन कहलाता है, तो छोटी छोटी कन्याओं को अपने यहाँ बुलाते हैं, और इन कन्याओं में कई अपने यहाँ एक कुमार 7 कन्याओं के बीच में बुला लेते हैं, उनके चरण धुलाई करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उस समय उन्हें कन्या नहीं समझते, लेकिन देवी स्वरूपा ही समझते हैं। आश्चर्य की बात है कि दीपक को जगाने वाला भी प्राणी, दीपक बनाने वाला भी प्राणी, और दीपक के आगे नतमस्तक होने वाला भी प्राणी, और दीपक के सामने नतमस्तक होते हुए जब भक्त जन ये बोलता है कि माँ जैसे ये दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, तो भी मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कर दे। सचमुच क्या ये मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होती कि माँ कौन थी, माँ की यादगार में ज्योत क्यों जलाई जाती है, और ज्योति जगाकर ज्योति के सामने नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। विशेष जो बोकर और अष्टमी या नवरात्रि के दिन उन जो को काटना, खेती को काटकर बच्चों की थाली के अंदर उनके पत्ते रखना, इसका रहस्य क्या है। रात्रि को जागना, व्रत रखना, माँ की महिमा गाना, सचमुच मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर इन सब चीजों का अर्थ हम जान जाएं, तो हमें त्योहार मनाने में आनंद ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारी माँ का त्योहार है। सर्वप्रथम मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि वास्तव में ये 9 रातें, क्योंकि 10वां दिन विजयदशमी के नाम से पुकारा गया है, जिस दिन विशेष दशहरे का प्रारंभ होता है, और 10 दिशाओं में बोलबाला जिन विकृतियों और विकारों का है, जिनका सूचक रावण माना गया है, अंतिम दिन उसे जलाया जाता है। लेकिन आज तो मैं आपको देवियों के विषय में ही बताना चाहूंगी कि देवियां कौन थी, इनकी रचना किसने रची, इनकी रचना किस लिए रची गई, और इस श्रेष्ठ रचना ने कौन से ऐसा महान कर्तव्य किया कि आज तक प्राणी इन प्रतिमाओं के सन्मुख उपस्थित होकर अपने मन की आशाओं को पूर्ण कराना चाहता है। और जैसा कि मैं आपको कलकत्ता की बात सुना रही थी, आश्चर्य आ रहा था कि 2 दिन आवाहन किया माँ में प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा की, उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराया, मन के भावों को अनेक रूपों से उनके सामने प्रदर्शित किया। लेकिन पूजा हो जाने के पश्चात अंतिम दिन वही माँ की प्रतिमा को ट्रक में रखकर या किसी भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट पर रखकर जाकर सागर या नदी में जल प्रवाह कर देते और सात पत्थर बांधते ताकि वो नीचे चली जाए। और मैंने यहाँ तक देखा, आश्चर्य हुआ कि ऊपर पांव रखकर खड़े हैं कि डूब जाना चाहिए अब इस प्रतिमा को। कमाल है, देवियों को बनाने वाला भी मानव, उन्हें भोग लगाने वाला भी मानव, फिर उनको डुबो देने वाला भी मानव, इधर स्थापना करता है, फिर पालना करता है भोग आदि लगाकर, फिर उनको डुबो देता है। क्या आप सबके मन में ये जानने की उत्कंठा नहीं होती कि हमारी ऐसी माँ जिसके जीवन की इतनी महानता और इतनी विशेषताएं थी कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती थी, और सचमुच ऐसी माँ के हम बच्चे, क्या हम 9 दिन तक ही माँ को माँ कह के पुकारेंगे? 9 दिन के पश्चात वो हमारी माँ नहीं होगी? क्या 9 दिन के अंदर ही माँ के व्रत रखेंगे, उससे आगे या पीछे माँ के व्रत नहीं रखेंगे? क्या 9 दिन ही अपने घर में प्याज लहसुन और तमोगुणी चीजों का बहिष्कार करेंगे? क्या उससे आगे और पीछे जैसा चाहिए वैसा ही खाते रहेंगे? क्या 9 दिन तक माँ की जोत जगाई है और हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और जब माँ की जोत 8 दिन पूरी हो जाए और जल प्रवाह कर दी जाए खेतरी और देवी देवता देवियों को जल प्रवाह कर दिया जाए, तो उसके पश्चात क्या हम ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देंगे? सचमुच इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जाने बिना अगर कोई मनुष्य करता है तो मैं ऐसा समझती हूँ अंधश्रद्धा। ये संसार एक चक्र के न्याय चलता है जिसमें 4 स्टेजेस आती, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम, सत्सु, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्सु त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाएगा, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा जाएगा। सत्सु त्रेता जब दिन का समय था तो सर्व आत्माएं इस धरा पर गुणों से संपन्न थी, पांचों तत्व प्रकृति के सतोगुणी थे, तो ऐसा कहने में आएगा आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। ये थी प्रभु की, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की वो रचना जिस सृष्टि को सर्वशक्तिवान ने रचा। और आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण की रचना अवश्य संपूर्ण नहीं होगी, लेकिन कालांतर के पश्चात धीरे धीरे, कालांतर मैं ऐसा कहूंगी, समय के फेर आया, समय में एक मोड़ आया, जब वो आधा कल्प पवित्र आत्मा और पवित्र शरीर, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवता आत्माएं, जब ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश प्रारंभ हुआ तो देह अभिमान के कारण देव आत्माएं वाम मार्ग में चली गई। वाम मार्ग से मेरा तात्पर्य है कि देही स्वरूप स्थिति में जब आत्मा स्थित थी तो देह में स्थित रहते हुए भी आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, और जिस समय द्वापर युग आया और ब्रह्मा की रात्रि का शुभ आरंभ हुआ उस समय देव आत्माएं देहाभिमान में आ गई, और देहाभिमान में आने के कारण विकृतियों और विकारों ने इन देव आत्माओं पर अपना स्वराज्य दाम्पत्य जमाना प्रारंभ कर दिया। आधा कल्प आत्माएं पूजनीय थी, आधा कल्प के पश्चात आत्माओं की देहों में पूजा होनी प्रारंभ हो गई और वही आत्माएं जो पूजनीय थी, जिनकी पूजा होनी शुरू हो गई, वो स्वयं पुजारी बन गई। और पुजारी ही नहीं, विकारों से ग्रसित हो जाने के कारण विकारी बन गई। ऐसा कहेंगे कि सभी देवी देवता विकारों रूपी असुरों के कैद में आ गए। अब विचार की बात है कि देवताओं को इस असुरों के कैद से कौन छुड़ाए? कोई साधारण प्राणी मात्र तो छुड़ा नहीं सकता। आज हम दो त्योहार रात्रि में मनाते हैं। एक त्योहार शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और दूसरा त्योहार नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि परमात्मा कल्याणकारी की यादगार का दिवस है, जो सृष्टि पर उस समय आते हैं जब सृष्टि पर अज्ञानता का अंतिम चरण चल रहा होता है। तमोगुण अपनी तमोगुणी स्थिति पर चरम सीमा पर पहुंच रहा होता है। तामसिकता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही होती है। ऐसे समय पर सर्वशक्तिवान कल्याणकारी परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, वो सृष्टि पर अवतरित होते हैं। प्रश्न उठता है कि ज्योति स्वरूप परमात्मा सृष्टि पर कैसे अवतरित होते होंगे?